السلام علیکم، یہ پارٹ ون ہے ناول بیچارہ شیر زور۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز قمر خلیل، پیشکش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف ابن صافی، بی اے۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون۔ پیش رس بیچارہ شیزور حاضر ہے۔ اس کہانی کے سلسلے میں بے شمار تجاویز موصول ہوتی تھی۔ کسی نے لکھا تھا علامہ مظلوم ہے، اس لیے مصنف کا فرض ہے کہ اسے کسی غیر ملک کی طرف فرار ہو جانے میں مدد دے۔ کوئی رقم ترار ہے کہ ایسے کسی موضوع پر قلم ہی اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ غرضی کا جتنے منہ اتنی باتیں۔ سوال یہ ہے کہ میں اس موضوع پر قلم کیوں نہ اٹھاتا۔ عالم بالا سے پلاٹ نہیں ٹپکتے، اسی زمین پر جنم لیتے ہیں اور زمین پر جو کچھ ہوتا ہے اس سے متعلق لکھوں گا۔ کسی جاگیردار کے مظالم کی داستان سن کر یہ پلاٹ ترتیب دیتا ہے۔ اس قسم کے مظالم کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ علامہ دہشت اس کی ایک ممکنہ صورت ہے۔ ہر چند کے جاگیردار کے جرم اور قانون کے محافظوں کی چشم پوشی نے اسے ایک بہت بڑا مجرم بنا دیا ہے، لیکن قانون بہرحال اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ مجرم کو سزا ضرور ملے گی، خواہ دوسروں کے لیے وہ کتنا ہی قابل رحم کیوں نہ ہو۔ فلمی انداز میں نہ سوچئے کہ جج صاحب یہ مجرم نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرہ مجرم ہے جس میں اس نے جنم لیا ہے۔ بیچارے فلمی جج صاحب کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ وکیل صاحب سے پوچھیں کیا یہ معاشرہ آسمان سے ٹپکا ہے۔ تو میرے بھائی، آخر ہم جذبہ انتقام کی تہذیب کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک ایسا معاشرہ کیوں نہیں تشکیل دیتے جس میں ترنم خانوں کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو؟ آخر فلمی قسم کے ہوائی قلعے کب تک؟ بیچارے علامہ کا فرار ہوائی قلعے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اور نہ فلمی قسم کے ڈائلاگ جاگیردار کے مظالم سے نجات دلا سکتے ہیں۔ کہانی کے اختتام پر ہنسنے ہنسانے کا موڈ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ علامہ کے انجام پر میں بھی دکھی ہوں۔ آپ بھی اگر پیش رس پڑھ کر مسکرا نہیں سکے تو کہانی ختم کرنے کے بعد آپ کو اس پر افسوس نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے۔ احمد پور شرکیہ سے ایک بھتیجے نے کسی اخبار کا تراشہ بھیجا ہے جس میں لمحہ بلمحہ کے نام سے فریدی اور حمید کی سپروڈی کے گئی کی گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اسے خاکہ اڑانا کہتے ہیں۔ بھتیجے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ پیروڈی لکھنے والے فریدی کی بیک گراؤنڈ سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، اور پیروڈی میں پھکڑ پن بھی پیدا ہو گیا ہے۔ انہیں چاہیے کہ پیروڈی لکھنے کے لیے اردو میں شفیق الرحمان اور انگریزی میں اسٹیفن ملیکاک کو پڑھیں۔ اپنی لکھی ہوئی پیروڈیز کی بھی سفارش کر سکتا ہوں، انشاءاللہ انہیں پیروڈی لکھنے کا سلیقہ ہو جائے گا۔ ابن صفی۔ شاید قصہ جھریام کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ کسی سفید فام خاتون نے اس کی حدود میں قدم رکھا تھا۔ جولیا نافنٹر واٹر جدھر سے بھی گزرتی تماشا بن جاتی۔ ہر چند کے فرحان جاوید اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میاں تو قیصر محمد کے مشورے کے مطابق اس نے اپنی ایک طالبہ جولیا کے حوالے کر دی تھی تاکہ وہ اس کے لیے مترنم کے فرائض انجام دیتی رہیں۔ اس لڑکی کا نام سائرہ تھا، شوخ و چنچل اور اسمارٹ تھی، زبان رکھنے کا فارم نہیں لیتی تھی۔ دونوں ناشتہ کر کے نکل جاتی اور لنچ کے وقت تک مقامی عورتوں سے گفتگو کرتی پھرتی۔ میاں تو قیصر محمد کی مہمان ہونے کی وجہ سے قصبے کے انتہائی قدامت پسند گھرانوں میں بھی ان کا گزر ہو گیا تھا، ورنہ یہاں تو ایسے افراد بھی موجود تھے जो बेपर्दा खवातीन से अपनी खवातीन का पर्दा कराते थे। कस्बे के कमीन औरतों से भी उनका पर्दा था। बहरहाल मियाँ तो तौकीर मोहम्मद के मेहमानों को अपना काम जारी रखने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। पिछले 2 दिनों से फरहाना जावेद थकन का बहाना करके हवेली से बाहर नहीं निकली थी। मियाँ साहब को तो उसने ये बताया था कि उसे किसी कदर बुखार रहने लगा है, लेकिन तबी इमदाद लेने पर आमादा नहीं हुई थी। नहीं जनाब, मैं अपना इलाज खुद ही कर लेती हूँ। अगर डॉक्टरों के चक्कर में पड़िए तो सिलसिला तवील हो जाता है, उसने कहा था। मगर ये तो अच्छा नहीं मालूम होता, मियाँ साहब बोले। फिक्र ना कीजिए, बस थोड़े आराम से ठीक हो जाएगी। मुझे तो कल से परेशानी है। किस बात की? यानी कि आपकी सेहत। आप तो पूरे कस्बे के लिए परेशान रहते हैं, वो मुस्कुराई थी। वो तो है, लेकिन लेकिन क्या? वो नीम वह आंखों से उन्हें देखती हुई बोली। आप मेहमान हैं ना? मियाँ साहब गड़बड़ा कर जल्दी से बोल पड़े। फरहाना ने खामोश होकर आंखें बंद कर ली। वो एक आराम कुर्सी पर नीम दराज थी, चेहरे से अजमहलाल जाहिर हो रहा था। थोड़ी देर बाद भर्राई हुई आवाज में बोली, कुछ लोग बड़े बदनसीब होते हैं। जी मियाँ साहब चौंक पड़े। जी हाँ, फरहाना ने आंखें खोल दी और उनकी तरफ देखे बगैर बोली, ये दोस्त है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई परेशान होने वाला भी नहीं होता। मम मैं नहीं समझा। कम अज कम मेरे लिए कोई परेशान होने वाला नहीं है। मुझे बेहद अफसोस है कि आपके खानदान वाले आपसे ज्यादा बुरे दिन देखे हैं मैंने। आप कम अज कम ये तो जानते हैं कि आप कौन हैं। ओ, मुझे अफसोस है मियाँ साहब को इनके अलावा और कोई अल्फाज ना मिल सके। इसकी जरूरत नहीं, वो हाथ उठाकर बोली। जज्बात से खाली अल्फाज सुनते सुनते कान पक गए हैं। ओ मिस मियाँ साहब नर्वस हो गए थे। कुछ देर खामोशी रही थी, फिर फरहाना ने भर्राई हुई आवाज में कहा था, मुझे शर्मिंदगी है, मैं जज्बाती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। आप बहुत हमदर्द और नेक आदमी हैं, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। हकीकत अर्ज कर रही हूँ, न जाने क्यों आपकी मौजूदगी में। वो पूरा जुमला किए बगैर खामोश हो गई। मियाँ साहब इस्तेफ़हामिया नजरों से उसकी तरफ देखते रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो थोड़ी देर बाद उलझ कर बोली। बेतकल्लुफी से कह दीजिए, इस एहसास को अल्फाज का जामा पहनाने से कासिर हूँ। मियाँ साहब की आंखों में अजीब से तासात पाए जाते थे। ऐसा लगता था जैसे बज़बान खामोशी घुघिया रहे हों। तुम्हें मेरी कसम है, कह दो जो कुछ कहना चाहती हो। लेकिन फरहाना ने फिर खामोश होकर आंखें बंद कर ली थीं। मियाँ साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि अब इन्हें क्या कहना चाहिए। कुछ ना कुछ तो कहना ही था। बर वक्त हकलाए दरअसल मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मतलब ये कि आपके अफराद खानदान को ढूंढने में मदद दे सकूं। अफराद खानदान? क्या मैंने अभी ये नहीं कहा था? कम अज कम आप ये तो जानते हैं कि आप कौन हैं। मैं नहीं समझा। करीमपुर के उस तबाहकुन जिलसिले के बारे में तो आपने सुना ही होगा जिसने पूरे शहर को खंडर बना दिया था। जी हाँ, मेरे बचपन की बात है। वही एक खंडर में रोती पाई गई थी। यतीम खाने के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरी उम्र 2 साल से ज्यादा नहीं थी। कोई नहीं जानता कि मेरे वालदेन कौन थे। उस खंडर के आसपास कोई ऐसा फर्द नहीं मिल सका था जो मेरी शनाख्त कर सकता। मियाँ साहब की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। फरहाना उनकी तरफ नहीं देख रही थी। उन्होंने मौके गनीमत जानकर जल्दी से अपनी आंखें खुश की और भर्राई हुई आवाज में बोले, आपके हालात सुनकर गहरा सदमा पहुंचा है। आपके गम के सामने मेरा गम तो कुछ भी नहीं है। फरहाना मजीद कुछ कहने वाली थी कि लड़कियों की हंसने की आवाज आई। शायद वो सब वापस आ गई थीं। वो सीधी होकर बैठ गई, लेकिन आने वाली हैं सिर्फ जुलियाना और सायरा थी। हेलो जुलिया, मियाँ साहब से मुखातिब होकर चहकी। वो उठ गए थे और उन्होंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया था। तुम्हारा क्या हाल है, जूलिया ने फरहाना से पूछा। थकान और हल्का सा टेम्परेचर, मुझे तो यहाँ की आबो हवा बेहद रास आई है, जूलिया ने मियाँ साहब की तरफ देखकर कहा। जनाब आप जन्नत में रहते हैं। शुक्रिया। जूलिया वहीं बैठ गई थी और सायरा दूसरे कमरे में चली गई थी। आज कितना काम किया आपने, मियाँ साहब ने जूलिया से पूछा। काम? भला इतने प्यारे लोगों में काम हो सकता है, सारा वक्त तो बातों में गुजर जाता है। कितनी अच्छी औरतें हैं, कितनी पुरसुकून। काश मैं आपकी जबान जानती होती और इनसे बराह रास्त गुफ्तगु कर सकती। मैं तो अभी तक यही नहीं समझ सकी कि तुम करना क्या चाहती हो, फरहाना बोली। मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं क्या करना चाहती हूँ। क्या बात हुई, आखिर मैं क्या लिखूंगी, किस तरह लिखूंगी, ये तो पहले ही सोचना चाहिए था। मैं नाअहली की बात नहीं कर रही, मेरी समझ में नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू करूँ, रहन सहन और रस्मों रिवाज पर लिखूँ, या आदमी की मासूमियत को मरकजी ख्याल बनाकर कोई कहानी लिख डालूँ। मैं आदमी के मुस्तकबिल से मायूस हो गई थी, लेकिन यहाँ की उन औरतों से मिलकर बड़ी ढारस बंधी है जिन पर अभी तक बाहर के नजरियात हमलावर नहीं हुए हैं। फरहाना ने बुरा सा मुंह बनाया था, लेकिन कुछ बोली नहीं थी। मियाँ साहब का चेहरा दुखने लगा था। कस्बे की औरतों की तारीफ सुनकर, वो भी एक गैर मुल्की औरत की जबानी, जो खुद इनके ख्याल के मुताबिक रोशनी से तारीख में चली आई थी। तो आपका ये ख्याल है कि ये औरतें सोच बूझ भी रखती हैं, इन्होंने पुरमसर्रर लहजे में कहा। सदियों के तजुर्बात का निचोड़ है इनके पास, अलबत्ता वो इसका तजिया नहीं कर सकती। हम तजिया कर सकते हैं, लेकिन खुद को इसकी अफादियत से महरूम कर चुके हैं। आप बड़ी अजीब बातें कर रही हैं। आज के आदमी के पास बातों के अलावा और रहा ही क्या है, फरहान आते ने तंजिया लहजे में कहा। तुम ठीक कह रही हो, जूलिया बोली, लेकिन बात थी आपके कुछ लिखने या ना लिखने की, मियाँ साहब ने कहा। बहुत सोच समझ कर कलम उठाना पड़ेगा, बहरहाल आप लिखेंगी। जाहिर है इतनी बातें तो महज बातों की खातिर हुई थी, फरहाना ने चुटकी ली। मुझे इससे इनकार नहीं है मिस जावेद, जुलियाना हंसकर बोली। यहाँ तौकीर सुनते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मियाँ तौकीर के कानों की लुएं सुर्ख हो गईं और वो छत की तरफ देखने लगे। क्या आप खुदा से कुछ पूछ रहे हैं, फरहाना हंसकर बोली। और मियाँ साहब खिसियानी सी हंसी के साथ उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मेरा ख्याल है कि अब लंच कर लेना चाहिए, उन्होंने किसी कदर हिचकिचाहट के साथ कहा। अभी दूसरी लड़कियां नहीं आई। ओ ये तो मैं भूल ही गया था, वो जल्दी से बोले, लेकिन आपने नाश्ते में सिर्फ एक कप चाय पी थी। जरा ही देर में वो भी पहुंच गई थी और लंच के लिए मेज लगा दी गई थी। खाने के दौरान में सिर्फ लड़कियां आपस में गुफ्तगू करती रही थीं। ये तीनों खामोशी से खाते रहे थे। खाने के बाद मियाँ साहब फरहाना के साथ उसी कमरे में वापस आ गए जहाँ कुछ देर कबल बैठे रहे थे। जूलिया अपने कमरे में चली गई थी। वो जब से यहाँ आई थी लंच के बाद कैलोरी की आदि हो गई थी। पता नहीं आबोहवा का असर था या और कोई वजह थी कि खाने के बाद ही पल के नींद से बोझल होने लगी थी। अब आप भी आराम कीजिए, मियाँ साहब ने फरहाना से कहा था। यानी आप जाना चाहते हैं? ये बात नहीं, मैं तो आपके आराम, मेरी फिक्र ना कीजिए, ये वो बात काट कर बोली। अब मेरी वापसी को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। मियाँ साहब की आंखों में चमक सी लहराई थी। वो कहती रही, जूलियर ठीक कह रही थी कि यहाँ पहुंचकर इसकी नजरियात में तब्दीली हुई है। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। मैं नहीं समझा। मर्दों से मुझे नफरत थी, लेकिन अब कम से कम शायद दुनिया में एक मर्द ऐसा जरूर है जिससे मैं नफरत नहीं कर सकती। मैं सहा हवन नखों की तरह उसकी तरफ देखते रहे। ऐसा मर्द जिसके लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। ओ कक कक, कौन है वो? मियाँ साहब हकलाए। ये आप पूछ रहे हैं? जी मैं, हाँ मैं नहीं बताती। वो उनकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई। मियाँ साहब की अजीब कैफियत थी। चेहरा सुर्ख हो गया था और पलकें झुकी पड़ी रही थी। कुछ कहना चाहते थे लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। मेरी तरफ देखिए, मियाँ साहब ने किसी शर्मीली लड़के लड़की के से अंदाज में पलकें उठाई थी। क्या मैं आपके दिल में जरा सी भी जगह बना सकी हूँ? मैं मम वो से हकलाकर रह गए। मैं समझ गई। मियाँ साहब ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। आपको मेरी ये बेतकल्लुफी पसंद नहीं आई? जी ऐसी कोई बात नहीं। ओ तो इसका ये मतलब हुआ कि आप भी मेरे बारे में सोचते रहे हैं? ना जाने क्यों मियाँ साहब खुद को अचानक चुगत महसूस करने लगे थे। अजीब सी जहनी कश्मकश में मुब्तला होकर उन्होंने बिलाखिर हाथ पैर डाल दिए, यानी उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। अरे अरे ये क्या? फरहाना उठकर उनकी तरफ झपटी थी। ये क्या हुआ? मियाँ साहब दोनों हाथों से मुंह छुपाए सिसकियों और हिचकियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। खुदा के लिए चुप हो जाओ, ये आपने क्या शुरू कर दिया? कुछ बताइए भी तो। मियाँ साहब ने कुछ कहने की कोशिश की थी लेकिन आवाज एक तवील हिचकी की सूरत इख्तियार कर गई। फरहाना सचमुच बौखला गई थी। उसने उठकर दरवाजा बंद कर दिया था और अब दिन के करीब ही खड़ी थर थर कांप रही थी। इसे डर था कि कहीं मियाँ साहब के रोने की आवाज दूसरों तक ना पहुंच जाए। फिर उसने उन्हें वहीं छोड़ा था और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई थी। यहाँ कई लड़कियां खड़ी नजर आईं। शायद मियाँ साहब की तवील हिचकी उनके कानों तक पहुंच गई थी। पर पता नहीं क्या बात है, वो अहमकाना अंदाज में बोली, क्या हुआ मिस? शायद उन्हें अचानक अपने खानदान वाले याद आ गए हैं। हिचकियों और सिसकियों की आवाजें खुले हुए दरवाजे से उन तक बराबर पहुंच रही थी। फिर जूरिया भी दिखाई दी और फरहाना बिल्कुल ही बदहवास हो गई। क्या हुआ, क्या बात है? जूलिया ने पूछा। बस क्या बताऊं, फरहाना अटक अटक कर बोली। खुद ही अपने खानदान वालों का जिक्र छेड़ा था और खुद ही रोने लगे। ओ अच्छा, तो अब यहाँ से हट जाओ, उन्हें तन्हा छोड़ दो, कोई भी उनके सामने ना आए वरना उन्हें शर्मिंदगी होगी। फिर जूलिया उन सभी को अपने कमरे में समेट लाई थी। काबिले रहम हालत थी, एक लड़की बोली, ट्रेजेडी ही ऐसी होती है। लेकिन मुझे उस पर हैरत है कि उस वबा के सिलसिले में हुकूमत ने कुछ नहीं किया, जूलिया ने कहा। वाकई हैरत की बात है। इस बार बाकायदा तभी बोर्ड बैठना चाहिए था जो असबाब का पता लगाता, फरहाना ने कहा। बहरहाल वो एक बेहद दुखी आदमी है, जूलिया बोली। इस्तरारी तौर पर रो पड़े होंगे, बाद में शर्मिंदा होंगे, लिहाजा उनसे इसके बारे में कुछ ना पूछा जाए। जाहिर है कि यही होगा, फरहाना ने कहा। तनवीर की हालत बेहतर नहीं थी। उसे साइको मेंशन ही के मेडिकल वार्ड में रखा गया था और इमरान ही के महकमे के बेहतरीन मालिज उसकी देखभाल कर रहे थे। इमरान ने उसे जाए वारदात से हटा देने में बड़ी फुर्ती दिखाई थी क्योंकि पुलिस से मतभेद नहीं चाहता था। पुलिस बाद में पहुंची थी और उसे वहां धमाकों के असरात और खून के धब्बों के अलावा कुछ नहीं मिला था। सूफी अब अब्दुल शकूर साफ निकल गया था और अब तो इमरान सोच रहा था कि उसने दीदार दानिस्ता उन्हें ताकुफ की दावत दी थी और फिर मारूफ करने की कोशिश करता हुआ साफ बच निकला था। अपने इस ख्याल की तस्दीक के लिए उसने फोन पर थेलमा से राबता कायम करना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ से घंटी बजती रही, किसी ने देर तक रिसीवर ना उठाया। फिर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए मालिक का पता लगाने की कोशिश की गई थी, मगर नतीजा सिफर। नंबर जारी साबित हुए। उस मेक की सफेद गाड़ियां शहर में लातादाद रही होंगी। उसने एक बार फिर थेलमा को फोन किया। दूसरी तरफ से राबता कायम होने की आवाज के साथ एक मर्दाना आवाज सुनाई दी थी, और ये नादिर सनमानी के अलावा और किसी की आवाज नहीं हो सकती थी। मुसलहतन इमरान किसी अमरीकन औरत के से लहजे और आवाज में बोला था, थेलमा से मिलाओ। कौन है? दूसरी तरफ से पूछा गया। रोजा। मैं किसी रोजा को नहीं जानता। क्या तुम्हारा जानना जरूरी है? थेलमा को बुलाओ, इमरान ने उससे लहजे में कहा। हाँ, मेरा जानना जरूरी है। तुम आखिर हो कौन? उसका शौहर। ओ मिस्टर सलमानी। हाँ, हम कभी नहीं मिले। थेलमा तुम्हारा जिक्र बड़े प्यार से करती है, लेकिन कभी मिलवाया नहीं। अच्छा, वो बीमार है, सो रही है। इमरान ने तवील सांस ली और मजीद कुछ कहे बगैर सिलसिले मुनकता कर दिया। फिर ब्लैक जीरो के नंबर डायल किए थे। हेलो, ब्लैक जीरो की आवाज आई। क्या खबर है? निगरानी बदस्तूर जारी है। इलामा आज सुबह 9 बजे सिर्फ 1 घंटे के लिए यूनिवर्सिटी गया था। 10:25 पर फिर घर वापस आ गया था। उसके बाद से अभी तक दोबारा बाहर नहीं निकला, यानी घर ही में मौजूद है। जी हाँ। क्या सबूत है? मैं नहीं समझा जनाब। घर में मौजूदगी का सबूत मांग रहा हूँ, बाहर नहीं निकला। हो सकता है इस तरह निकला हो कि तुम्हें इल्म ही ना हो सका हो। मेकअप में वो अपनी जसामत नहीं छुपा सकता। क्या इमारत के अकबी हिस्से की भी निगरानी करा रहे हो? जी हाँ, निकासी के हर दरवाजे की। इसके बावजूद भी तुम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वो यूनिवर्सिटी से वापसी के बाद से घर ही पर रहा हो? क्या निगरानी करने वालों को किसी खिड़की या दरवाजे से नजर आता रहा है, या उन्होंने उसे कंपाउंड में टहलते देखा था? तफसीर का इल्म मुझे नहीं है, मालूम करके मुझे मुतल्ला करो। बहुत बेहतर जनाब। रिसीवर रखा ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। ऑपरेशन रूम का एक असिस्टेंट दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लिफाफा था, जिसे मेज पर रखकर खामोशी से वापस चला गया। इमरान ने लिफाफा उठाया। कोडोर रोल्स में जूलिया का पैगाम था, जिसे डीकोड करने बैठ गया था। हालात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मर्द ने औरत के सामने रोना शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल है कि वो उसे बुरी तरह उलझा चुकी है। इतना मुख्तसर सा पैगाम, इमरान पुरतफक्कुर अंदाज में बड़बड़ाया था। मर्द ने औरत के सामने रोना शुरू कर दिया है, क्या बात हुई? वो तो पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है औरत के सामने। फोन की घंटी बजी और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ब्लैक जीरो की कॉल थी और वो कह रहा था, नहीं जनाब, बस वो घर के अंदर गया था, फिर अब तक वापसी नहीं हुई। किसी खिड़की दरवाजे से भी नहीं दिखाई दिया। इमारत की ज्यादातर खिड़कियां रोशन हैं और आज कोई उससे मिलने भी नहीं आया। निगरानी जारी रखो। बहुत बेहतर जनाब। रिसीवर रख ही रहा था कि उसे उल्लामा का बावर्ची वाजिद याद आया, वो भी साइकोमेशन ही के एक कमरे में कैद था। वाजिद? आखिर वाजिद की असल हैसियत क्या थी? उसके अपने बयान के मुताबिक वो शहजाद का मुलाजिम था, और शहजाद ही ने उसे उल्लामा के बावर्ची की हैसियत से काम करने का हुक्म दिया था। गोया वो हकीकत शहजाद ही का मुलाजिम था, और बाज़ाहिर इस तकर्रुर का मकसद यही था कि वाजिद इल्लामा पर नजर रख सके। खुद वाजिद ने भी इसका एतराफ किया था। दूसरी तरह शहजाद ने इल्लामा के उन शागिर्दों के सिलसिले में उससे सौदा करना चाहता था जो उसकी कैद में थे, और फिर वो मार डाला गया था। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि इसने कोई गलत कदम उठाया था? फिर अगर वो शहजोर की गोली का निशाना बना था तो शेजोर और लामा के शागिर्दों के दरमियान किस किस्म का ताल्लुक हो सकता है? और ये ताल्लुक बराहे रास्त है या इसमें इलामा के वास्ते को भी दखल है? यास्मीन की मौत का जिम्मेदार इलामा था या शेजोर? वो सोचता रहा, फिर दफातन उठा था और कमरे से निकल आया था। पहले तनवीर की खैरियत दरियाफ्त की और फिर उस कमरे की तरफ चल पड़ा जहाँ बर्नार्ड को रखा गया था। तनवीर की वजह से सख्त तश्वीश में मुब्तला हो गया था। अभी तक उसकी बेहोशी रफा नहीं हुई थी। बहुत ज्यादा खून जाया हो गया था। साइकोमेंशन के डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए हर इम्कानी तदबीर कर रहे थे। वो बर्नार्ड के कमरे में दाखिल हुआ जो अभी सोया नहीं था। उसे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठा। इमरान ने उसे बैठने का इशारा किया था। मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ, बर्नार्ड भराई हुई आवाज में बोला, यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आज उसने फिर मेरे एक आदमी को शदीद जख्मी कर दिया है। किसने? शेजोर की बात कर रहा हूँ, इमरान उसे घूरता हुआ बोला। बाय रास टकराओ, बर्नार्ड के लहजे में हैरत थी। इमरान ने सर को जनबिश दी और बदस्तूर उसकी आंखों में देखता रहा। कहाँ और कैसे? इमरान ने पूरा वाक्य दोहराया। बर्नार्ड मुतफक्की नजर आने लगा था। थोड़ी देर बाद वो बोला, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही तुम लोगों को अपना ताकुब पर उकसाया हो। अब मैं भी यही सोच रहा हूँ। पूरा वाक्य बताओ। इमरान ने थेलमा की कहानी शुरू कर दी। बर्नार्ड हमातन तवज्जा बना सुनता रहा। इमरान की खामोश होने पर बोला था, अगर वो थेलमा से कॉन्टिनेंटल के इस कमरे में एक बार मुलाकात कर लेने के बाद भी वही जमा रहा था तो यकीन करो कि वो तुम्हारा ही मुंतजर रहा होगा। अच्छी तरह जानता था कि तुम थेलमा से सब कुछ उगलवा लोगे और आखिरी जाए मुलाकात का जिक्र तुमसे जरूर करेगा। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। वो भेड़िया है इमरान साहब, क्या तुम शहजाद यूनिट के वाजिद नामी किसी आदमी से वाकिफ हो? नहीं, मेरे लिए ये नाम नया है, कोई अहम आदमी ना होगा। शहजाद ने उस अल्लामा दहशत की निगरानी पर मामूर किया था और ऐसे मौके फरहम किए थे कि अल्लामा उसे बावर्ची की हैसियत से अपने यहाँ मुलाजिम रख ले। तुम पहले भी अल्लामा दहशत का जिक्र कर चुके हो। मैं नहीं समझ सकता कि उसका इन लोगों से क्या ताल्लुक हो सकता है। शहजाद उसका शागिर्द रह चुका है। और भी ज्यादा हैरत की बात है कि वो अपने उस्ताद की निगरानी करा रहा था। इसके अलावा वाजिद की एक ड्यूटी और भी थी। वो हर सेंचर की शब को किसी सफेद फार्म हफ्ती औरत को फांसता था और उसे हट में पहुंचा देता था जिसमें तुम ठहराए गए थे। नहीं, बर्नार्ड उछल पड़ा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ और मेरे इस हट में पहुंचने से कबल ही वाजिद तुम्हारे हाथ लग गया था। ये भी हकीकत ही है। जरा की पनाह, उसने तुम्हें फांसने के लिए मुझे चारा बनाया था। सही नतीजे पर पहुंचे हो तुम, इमरान सर हिलाकर बोला। क्या वाजिद को इल्म था कि वो उन औरतों को किस लिए उस हट में पहुंचाता रहा है? नहीं, वो इससे ला इल्म था। उसका काम सिर्फ इतना था कि औरतों को हट तक पहुंचाकर वापस हो जाए और ये जानने की कभी कोशिश ना करे कि उसे हट में कौन रहता है। ये हिदायत उसे किससे मिली थी? शहजाद से। और वो सेंचर ही का दिन था जब वो एक हप्पी औरत पर डोरे डालता हुआ मेरे हाथ लगा था, इसलिए उस औरत कोई औरत उस हट में नहीं पहुंची सकी थी। बस तो फिर शेजोर ने अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या हुआ है। ऐसा ही कुछ हुआ है। वो ना वो तुम्हें उसे हट में ठहरा कर मुझे तुम्हारी राह पर डालने की कोशिश ना करता, लेकिन तुम अभी तक उसके हाथ नहीं आ सके। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो भी तुमसे किस कदर खाइफ मालूम होता है। तुमने उसे खासी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और ठहरो, अब याद आ रहा है, ये नॉवेल बेचारा शेजोर का बकिया हिस्सा पार्ट 2 में समाप्त फरमाए।